यहाँ से सूरत अल बकरा आयत 258 से 263 तक इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे। अब देखें, पिछली आयत में अल्लाह ताला ने दो दोस्तों की बात की। एक लोग वो हैं जिनका दोस्त अल्लाह है और कुछ लोग वो हैं जिनका दोस्त तागूत है। तो वो ईमान वाले जो अल्लाह को अपना दोस्त बनाते हैं, वो एक वाहिद ज़ात है जो इंसान को अंधेरों से नूर में ले आता है। तो अल्लाह ताला उन लोगों की मदद कैसे फरमाता है, तीन वाकयात हैं जो इस रुकू में हम पढ़ेंगे, इस रुकू में हम देखेंगे। पहला वाकया इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है जो उनका मनाजरा नमरूद के साथ हुआ था। दूसरा वाकया उज़ैर अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक है जब वो 100 साल तक फौत हुए रहे, मुर्दा हालत में रहे। और तीसरा वाकया दोबारा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में है कि जब उन्होंने अल्लाह ताला से ये दरख्वास्त की, दुआ की कि अल्लाह ताला उनको दिखा दे किस तरह वो मुर्दों को जिंदा करेगा। तो तीनों वाकयात हयात बादुल मौत यानी लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में है। पहले वाक्य में लॉजिक दी गई और दूसरे दो वाकयात के अंदर आंखों से दिखाया गया। अलम तरा इलल्लज़ी हाज्जा इब्राहीम, क्या नहीं तुमने देखा उस शख्स की तरफ जिसने झगड़ा किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। कौन शख्स था वो जिसने झगड़ा किया था? नमरूद। नमरूद असल में नाम है, इराक के बादशाहों का नाम होता था नमरूद, जैसे मिस्र के बादशाहों का नाम फिरौन होता था ना, और रोम के बादशाहों का नाम क्या होता था? कैसर, कैसर रोम कहते हैं ना। तो इसी तरह जो इराक के बादशाह थे, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक में रहते थे, इराकी थे वो, तो उनको उनके वहां के बादशाह का नाम नमरूद था। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुमने गौर नहीं किया, तुमने देखा नहीं है उस शख्स की तरफ जिसने हुज्जतबाजी की थी, मुनाजरा किया था, बहस की थी, झगड़ा किया था, किससे? इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। किस बारे में झगड़ा किया था? फी रब्बी ही, उसके रब के बारे में झगड़ा किया। क्यों झगड़ा किया उसने? अन आताहुल्लाहुल मुल्क, इसलिए कि अल्लाह ने उसको बादशाह दे दी थी। ये मनाजरा सारा वो इसलिए कर रहा था, ये जुर्रत वो इसलिए कर रहा था कि वो वक्त का बादशाह बन गया था, अल्लाह ने दे दी थी उसको बादशाहत। इसलिए ओके, जब कभी इंसान के पास बादशाहत आ जाती है ना, बहुत दौलत आ जाती है, तो तब भी वो खुद को खुदा समझने लगता है, ऐसे होता ना। और फिर इंसान, अब देखें, थोड़ी सा किसी के पास माल आ जाए, यहाँ पे हम अपने सामने ही लोगों को देखते हैं, तो वो अकड़ जाते हैं, वो ऐसे समझने लगते हैं जैसे हम दुनिया की पत्नी कितनी बड़ी ताकत है। तो नमरूद तो बहुत बड़ा बादशाह था। अब वो पता है, दुनिया के अंदर जो बड़े बड़े बादशाह आए हैं, जिनकी सल्तनत मशरक से मगरब तक हुई है, तो उनमें दो मोमिन और दो काफिर। मोमिन कौन से थे? सुलेमान और दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान दाऊद अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे, और ज़ुल्करनैन, ये दो थे। और काफरों में नमरूद और बुख्तनसर। फिरौन बादशाह तो बड़ा था, लेकिन उसकी सल्तनत ऐसी बड़ी नहीं थी, वो तो मिस्र तक ही थी ना। इनकी मशरिक से मरते बहुत बड़ी इनकी सल्तनत थी। तो जब किसी की इतनी बड़ी यानी दुनिया को की पावर अल्लाह उसको दे देता है, खुद नहीं वो होती, अल्लाह उनको देता है, तो फिर आप सोचें कि फिर उसका दिमाग कहाँ तक पहुँच जाएगा। बाज़ कहते हैं ना 400 साल तक उसकी हुकूमत रही थी। तो अब उसके अंदर इतना तकब्बुर, गरूर और इस तरह आ गया था ना कि, और कम लोग ही अपने आप को इस मकाम पे संभाल सकते हैं। इसीलिए अक्सर अक्सर दौलत जो है ना, इंसान के लिए फितना बन जाती है। तो ऐसी दौलत से भी पनाह मांगनी चाहिए कि जो इंसान के लिए फितना बन जाए। ऐसे ही मांगे कि अल्लाह मुझे उतना ही देना जिसमें तेरी फर्मा बरदारी के साथ मैं चलती रहूं। इतना ना हो कि इंसान खुद ही को खुदा समझना शुरू हो जाए, या उसका दिमाग आसमान पे पहुंच जाए, या वो सरकशी करने लगे, या गरूर ऐसा उसके अंदर आ जाए, तकब्बुर ऐसा आ जाए कि वो दूसरों को कुछ ना समझे। क्योंकि ये चीजें दौलत के साथ आ ही जाती हैं। कम लोग होते हैं जो अपने आप को संभाल पाते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। तो जब नमरूद के पास जाहिर है अनाताहुल्लाहुल मुल्क, अल्लाह ताला ने फरमाया उसको बादशाहत जो दे दी थी, तो अब वो अल्लाह पे ही बातें करने लगा। क्योंकि उसने अपने आप को कह दिया था कि मैं खुदा का अवतार हूं, असल में उस जमाने में लोग सूरज की पूजा करते थे और सूरज देवता समझते थे ना उसको, जैसे अब भी कुछ लोग सूरज देवता कहते हैं सूरज को। तो वो कहता था कि मेरे अंदर खुदा हलूल कर गया, मैं ये खुदा हूं, मतलब अब मैं उसी का अवतार दुनिया में, यानी मुझे, मैं तो ह्यूमन नजर आ रहा हूँ लेकिन असल में तो मैं खुदा ही हूँ। तो अपनी पूजा कराता था ना, अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पता चला कि ये तो किसी और खुदा को मानते हैं, तो उसने उनसे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसके दरबार में गए थे, किस लिए गए थे, कोई कहत साली वहां पे हो गई थी, तो वहां से गल्ला मिलता था तो ये गल्ला लेने के लिए गए थे, तो वहां पे इनका मनाजरा हो गया नमरूद के साथ। इस कॉल इब्राहिम, जब कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, अब देखे ये यहाँ पे बात हजफ है, यहाँ पे ये बात नहीं बताई गई, लेकिन अंडरस्टूड है कि यहाँ पे नमरूद ने सवाल किया कि तेरा रब कौन है, ठीक है, तो उसका जवाब दे रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, फरमाया रब्बी, मेरा रब वो है अल्लदी यहयी व युमीत, जो जिंदा करता है और मौत देता है, इसलिए कि जिंदगी और मौत ना किसी के भी हाथ में नहीं है, किसी के भी हाथ में नहीं। देखिए आज आप 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, सुबहान अल्लाह, ये साइंटिस्ट ने दुनिया जहान पर नीचे कर दी, लेकिन ये नहीं अभी तक समझ सके कि जिंदगी और मौत क्या चीज है, क्या चीज है वो जो आ जाती है इंसान के अंदर तो वो जिंदा हो जाता है, और जो चली जाती है तो मौत आ जाती है, वो क्या चीज है, व्हाट इज दैट स्पेसिफिक थिंग, वो नहीं समझ पाए, मौत कहां से आती है, वो क्या चीज क्या है। तो ये अल्लाह का अमर है, अल्लाह का हुक्म है, वो हमने जैसे बात आयतल कुर्सी में पढ़ी है ना, जितना इल्म अल्लाह ताला दे दे बस इंसान तो वो ही ले सकता है, वो थोड़ी वो अपनी रिसर्चेस कर करके और इल्म ले सकता है, नहीं ऐसे नहीं होता। तो लोगों की अकल आजिज आ चुकी है इंसानों की, वो मजबूर है कि इस मामले में अल्लाह की तरफ ही रुजू करें। तो वो है मेरा रब जो जिंदा करता है और जो मौत देता है, काला अना ओही व उम्मीद, वो ऐसा बिल्कुल ही अकल से पैदल आदमी था, उसने कहा मैं जिंदा करता हूं मैं मौत देता हूं, कैसे, वो कैद खाने में दो कैदी बंद थे, एक को मौत की सजा हो चुकी थी और एक जो था वो एक कसूर था, उसने कहा ये लो जिसको मौत की सजा हो चुकी है तुम जाओ, तुम फारिग हो जाओ, तुम आजाद हो, और ये जो दूसरा है इसको मैं मार देता हूं, उसको लटका दिया। तो उसने कहा ये इख्तियार तो मेरे पास भी है इसलिए मैं खुदा हूं, हालांकि उसको ये नहीं पता कि किसी को आजाद करना उसको जिंदगी देना थोड़ा ही है, और किसी को इस तरह से कि उसके ऊपर कोई तलवार चला दे तो इसको, ये किसी को मौत देना थोड़ी है, ये उसके हाथ में थोड़ा ही है, ये तो अल्लाह के फैसले हैं। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसी बात को देखें घसीटा नहीं कि अच्छा नहीं नहीं ये नहीं, ये थोड़ी है, मतलब ये तो नहीं ऐसे है, उन्होंने दूसरी तरफ एक और दलील लेकर आए। कहा इब्राहिम, कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, फइन अल्लाह यअती बिश्शम्सी मिन अल मशरिक फअती बिहा मिन अल मग़रिब, मेरा अल्लाह तो वो है, मेरा रब तो वो है जो शम्स को, सूरज को लाता है मशरिक से, तुम उसको मगरिब से निकाल के दिखा दो ना, क्योंकि उन्होंने देख लिया था ना ये बेसलेस बातें कर रहा है, तो उन्होंने उसको ऐसी बात कही कि अगर तुम्हारा कुछ इख्तियार है ना, तुम अपना इख्तियार यूज करो ना, तुम खुदा हो अगर तो फिर तुम जरा यूज करो अपना इख्तियार, अपनी अथॉरिटी, इसको मगरिब से निकाल के दिखाओ, तुम रब बने बैठे हो तो तुम्हारा सूरज पे तो इख्तियार फिर होना चाहिए ना। तो अब क्या हुआ, फबोहितल्लदी कैफा, मभूत होके रह गया, मभूत हैरान शुशदर स्पीचलेस हो गया वो जिसने कुफर किया, ये सब बात में लाजवाब हो गया लेकिन ईमान फिर भी नहीं लेकर आया। और देखो सुभान अल्लाह कितनी सिंपल सी बात से, सिंपलेस्ट, हम सोचते ना हम कैसे तबलीग करें, हम कैसे वो करें, सुभान अल्लाह ये है, ये बात जो बात है ना, युखरी जुहुम मिन दुलुमाती इलन नूर, अल्लाह के, अल्लाह वली है ना ईमान वालों का, देखो कैसे अल्लाह ताला उनको सुझाता है, कैसे उनको उनको बात करने की ताकत देता है, इसलिए कि नमरूद के दरबार के अंदर अगर सोचे वो एक बंदे को जो बेगुनाह है उसको पकड़ के ये कह सकता है कि इसको मौत दे दो और एक को छोड़ सकता है, तो सोचे उसको कोई पूछने वाला नहीं था वहां पे, वो बड़ा मतलब मैंने जैसे बताया कि बहुत बड़ा बादशाह था, तो वो ऑल इन ऑल वहां पे उसकी हुकूमत थी, कोई ऐसे नहीं था कि उसको किसी से मतलब है, कोई उसको पूछे, तो बड़ा बा इख्तियार था ना वो। तो अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये सोचते कि भाई ये तो इतना बड़ा बादशाह है, कहीं ये ना हो कि मुझे भी मरवा दे, भाई ये बात अभी कहनी नहीं चाहिए, अभी जरा हिकमत से चलना चाहिए, भाई ये नहीं करना चाहिए, मुझे भी ना लटकवा दे, छोड़ो मुझे क्या जरूरत पड़ी हुई यहां बोलने की। नहीं, मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो बात कही थी ना कि रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मौत देता है, तो ये सिर्फ मुंह से नहीं कही थी, उनको इस बात का यकीन था, इसीलिए उनको परवाह नहीं है नमरूद की, उनको पता है कि जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में। हमारे जैसा कोई हो तो हम मुंह से तो कहते हैं हाँ जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन इतना डरते इंसानों से, हाय वो ऐसे ना कर दे, हाय वो ये ना कर दे। अब वो नमरूद के सामने खड़े हुए हैं और सामने देख रहे हैं कि एक बेगुनाह को उसने खामखा से मरवा दिया और एक जो मतलब गुनाहगार था उसको छोड़ दिया, फिर भी डरते नहीं है, तो उनकी बातें नहीं होती थी ना, वो वाकई यकीन उनके अंदर था। ऐसे ईमान वालों का अल्लाह वली होता है और अल्लाह ने उनको ताकत दी कि वो यहां पे जुर्रत के साथ बोल सके। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफजल जिहाद ये है कि कोई जालिम जाबिर बादशाह के सामने कलमाए हक कहे, ये अफजल जिहाद है। जालिम बादशाह है, जाबिर बादशाह, उसके सामने हक बात कह देना। अल्लाहु अकबर। तो तबलीग के लिए देखे सिंपल सी दो बातें लेकर आए और उसको चुप कराया, वल्लाहु ला यहदिल कौम जालिमीन, अल्लाह हिदायत नहीं देता जालिम कौम को, यानी अल्लाह जबरदस्ती किसी को हिदायत नहीं देता, जो ऐसे जालिम होते हैं उसको नहीं अल्लाह हिदायत देगा। तो सोच ले, जुल्म से फिर बचना चाहिए, क्योंकि जुल्म की वजह से इंसान हिदायत से महरूम हो जाता है, यहां से पता चल रहा है ना। अच्छा, फिर ये एक रिवायत में आता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम, देखें अल्लाह वली है ना ईमान वालों का, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम गए थे यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा फैमिन था, कहत साली थी, तो नमरूद के पास गए, वहाँ से मिलता था गल्ला, तो गल्ला लेने के लिए गए, वहाँ पे ये मुनाजरा हो गया। जब मुनाजरा हो गया, वो जब स्पीचलेस हो गया, उसने कहाँ देना था अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कुछ, तो उसने आपको कोई गल्ला नहीं दिया, आप खाली हाथ वापस आ गए। जब घर के करीब पहुंचे था तो आपने ना दो बोरियों में रेत भर ली कि घर वाले समझे कुछ लेके आए, उनको तसल्ली उसके लिए ना, तो घर आते ही बोरियां रख के सो गए। जो आपकी बीवी थी ना हजरत सारा, उठी बोरियों को खोला तो देखा इतना अच्छा उम्दा अनाज था, ग्रेन से भरी हुई थी, खाना पका के तैयार कर लिया। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जब आंख खुली, देखा खाना तैयार है, पूछा अनाज कहाँ से आया, कहा वो जो दो बोरियां भर के लाए थे उन्हीं में से ये अनाज निकला। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अब समझ गए कि ये अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह वली है, ऐसे ही ईमान वाले जो होंगे अल्लाह ताला ऐसे फिर उनकी मदद फरमाता है। और उसके साथ फिर नमरूद के साथ क्या हुआ, उसके पास अल्लाह ने एक फरिश्ता भेजा, उसने आके उसको तौहीद की दावत दी लेकिन उसने नहीं माना, दोबारा दावत दी फिर नहीं माना, तीसरी दफा अल्लाह की तरफ बुलाया फिर भी नहीं माना। बार बार के इनकार के बाद फरिश्ते ने इससे कहा, अच्छा तुम अपना लश्कर तैयार कर लो, मैं भी अपना लश्कर तैयार करके लाता हूँ। तो नमरूद ने बड़ा भारी लश्कर तैयार किया, जबरदस्त फौज लेके सूरज निकलने के वक्त मैदान में आ गया। उधर अल्लाह ताला ने किसी को भी नहीं भेजा, मच्छरों का एक दरवाजा खोल दिया, बड़े बड़े मच्छर इतने तादाद में आए, इतने ज्यादा थे कि लोगों को सूरज भी नहीं नजर आ रहा था, इतने ज्यादा मच्छर आए। और ये भी अल्लाह के लश्कर है ना, अल्लाह के लश्करों को तो अल्लाह ही जानता है। तो अल्लाह की ये जो फौज थी उसने नमरूदियों पे ऐसा हमला किया, थोड़ी देर में उनका खून तो किया, गोश्त भी जो है ना सब खा गए, सोचे गोश्त भी खा गए, सारे के सारे वहीं मर गए, सिर्फ उनके हड्डियों के ढांचे पड़े हुए थे, स्केलेटन्स थे हर तरफ। तो इन्हीं मच्छरों में से एक जो मच्छर था, सिर्फ एक मच्छर, अल्लाह ने दुनिया को दिखाना था ना, सुभान अल्लाह, तो नमरूद के नथने में घुस गया, ये नॉस्ट्रिल में ना वो चला गया एक मच्छर। 400 साल तक उसका दिमाग में ऐसा उसको तकलीफ देता रहा, ऐसे अजाब में वो रहा कि इससे मौत भी बेहतर थी उस जिंदगी से। अपना सर दीवारों में मारता था, पत्थरों पे मारता था, हथौड़े कहता था लेकर आओ मेरे सर पे मारो। और इस तरह सिसक सिसक के उसको फिर मौत आई। अल्लाह ने इबरत का निशान बनाना था ना उसको, वरना उसी वक्त मच्छर खा लेते तो कैसे वो इबरत बनता। एक मच्छर देख, एक मच्छर से अल्लाह ने इतना बड़ा जो बादशाह अपने आप को खुदा समझे बैठा था, अल्लाह ने देखे निशानी दिखाई कि देखो तुम ऐसे बनते को तुम सोचते हो कि तुम खुदा हो, अल्लाह एक इतनी सी मखलूक से देखो तुम्हारा क्या हाल करवा देता है। छोटी सी मखलूक है मच्छर, जिसको बंदा कुछ भी नहीं समझता, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने उसके जरिए इसकी हलाकत का सामान किया। 400 साल तक उसका दिमाग चाटा इसने। अल्लाह अकबर, ये हैं अल्लाह की निशानियां। औकल्लज़ी मर्रा अला क़रियतिन, या फिर अगर ये बात से आपको मिसाल से नहीं समझ आती, लाइफ आफ्टर डेथ का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता, तो इससे समझो। और फिर सेकंड थिंग क्या है कि देखो अल्लाह कैसा दोस्त है ईमान वालों को, और कैसा उनको जुल्मतों से नूर की तरफ लेकर आता है। ये बात समझनी है ना, तो फिर इस बात से नहीं, अगर आपको समझ आई इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिसाल से, तो इस मिसाल से समझे। कल्लदी मरा अला क़रियतिन, एक बंदे की मिसाल है जो गुजरा था एक बस्ती से। अब ये आदमी कौन था इसका जिक्र नहीं यहाँ पे आया, यहाँ पे बताया नहीं गया कि ये बंदा कौन था, लेकिन इस इसराइली रिवायात से पता चलता है हमें, मरफू हदीस कोई इस बारे में नहीं है। हमें इसराइली रिवायत से क्या पता चलता है कि ये उज़ैर अलैहिस्सलाम की बात है। उज़ैर अलैहिस्सलाम यहाँ से गुजर रहे थे, और ये बस्ती कौन सी थी, ये यरूशलम का इलाका था जहाँ पे बुख्ते नसर एक बादशाह होता था। कहा जाता है बहुत पहले की ये बात है, जाहिर है ये तो जब मूसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए थे, फिर उनके बाद उनके जो नायब आए यूशा अलैहिस्सलाम वो भी फौत हो गए, उसके बाद बहुत अरसा गुजर गया था। और ये फ़लस्तीन का इलाका ये नहीं ना फतह करने के लिए जाना चाहते थे, जब मूसा अलैहिस्सलाम इनको लेकर गए थे इन्होंने कहा था नहीं मूसा हम तो नहीं लड़ सकते, तुम और तुम्हारा रब जाके लड़ो। फिर आपको मैंने बताया था, फिर वो उनकी जनरेशंस ख़त्म हो गई, 40 ईयर्स तक उस मैदान में वो घूमते रहे, और मतलब है कि ऐसे लॉस्ट रहे। और उसके बाद फिर इन्होंने यूशा अलैहिस्सलाम की लीडरशिप के अंडर वहाँ पर फ़लस्तीन को फतह किया, फिर वहाँ पर गए, फिर वहाँ पर रहे, फिर वहाँ पर बहुत अरसा तक ये इनकी हुकूमत भी रही। उसके बाद क्या हुआ, ये लोग इतने उसमें पड़ गए थे ना, बहुत ही दीन से दूर हो गए और बहुत अपनी गुमराहियों में पड़ गए थे इतनी ज़्यादा। फिर इनके ऊपर एक बादशाह था बुख्ते नसर, मैंने आपको बताया ना कि वो भी बहुत बड़ा बादशाह था, वो उसकी भी हुकूमत बहुत बड़ी थी। इतना जालिम था वो, यहाँ पर आया इस इलाके में यरूशलम के, उसने आके यहाँ पर वो खून खराबा किया कि कोई बंदा इनका नहीं बचा। जो बच गए थे तकरीबन कहा जाता है, ये कबाज रिवायात में ये भी आता है कि 6 लाख लोगों का इसने कत्ल किया था, और 6 लाख को अपने साथ कैदी बना के ले गया था। यहाँ पे कोई ईंट ऐसी नहीं थी जो बाकी बची हो, कोई ईंट नहीं थी बाकी बची, वीरान कर दिया इस सारे जगह को। और ये मतलब जिसको कहेंगे ना ईंट से ईंट बजा दी, इस तरह इस इलाके का हाल कर दिया था। और जो इनका ये जो बैतुल मक़दस था इसको भी गिरा दिया, तौरात को भी, वो भी गुम हो गई, बहुत जुल्म किया। तो अब यहाँ से कहा जाता है कि उज़ैर अलैहिस्सलाम गुजरे, उन्होंने देखा सारी बस्ती वीरान हो चुकी है, ना कोई मकान है वहाँ पे सालिम, ना कोई मकीन है। तो वहाँ पे ठहर के, एक बंदे के जेहन में आता है ना, ठहर के वो सोचने लगे। देखिए यहाँ पे इसी चीज़ की बात आ रही है कि वो गुजरे यहाँ से, ये उज़ैर अलैहिस्सलाम वही हैं जिनको, जिनके बारे में यहूदियों का एक, सारे यहूदी नहीं कहते, सिर्फ एक सेक्ट है इनको कहते हैं उज़ैर इब्नुल्लाह, उज़ैर नऊज़ु बिल्लाह, उज़ैर अल्लाह का बेटा वो कहते हैं ना, जो हमने पढ़ा भी है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया औकल्लज़ी मर्रा अला क़रियतिन, या उस शख्स की तरह जो गुजरा एक बस्ती पर, वह यह हाविया तुन आला उरूशी है, और वो गिरी हुई थी अपनी छतों पे, यानी कुछ भी सलामत नहीं था, सारी बस्ती गिरी हुई थी, बर्बाद थी, वहां पे कोई जिंदा था ही नहीं। आप सोचिए ऐसा कोई इलाका, डिजर्टेड इलाका आप देख ले तो कैसी फीलिंग आती है ना। तो जैसे आप, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला रहम फरमाए, कहीं जलजला जहाँ पे आ जाता है और बहुत बहुत मैसिव वहां पे डेथ टोल हो जाता है, कैसी वीरानी और दहशत होती है वहां पे। तो यहाँ पे उन्होंने जब ये देखा, قال أن يحيي هذه الله بعد موتها, किस तरह अल्लाह ताला इस जगह को, इस करिया को जिंदा करेगा इसकी मौत के बाद। जैसे इंसान के ऊपर एक गम तारी हो जाता है, एक एक तकलीफ होती है इंसान को, भला कैसे ये शहर कभी, यानी आबाद कैसे होगा, ये तो बिल्कुल खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। यानी ये नहीं है कि वो इस चीज पे, खुदा ना हस्ता, अल्लाह माफ करे, वो तो अल्लाह के नबी थे, ऐसा नहीं कि वो डाउट कर रहे हैं अल्लाह की कुदरत पे कि अल्लाह नहीं कर सकता, ये बात नहीं है। लेकिन जैसे इंसान के दिल में ख्याल आता है ना, अब कैसे होगा, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। जैसे आज हम उम्मत मुस्लिमा को देख के सोचते हैं कभी इनका भी रिवाइवल होगा, ऐसे लगता है जैसे कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन देखें, इसी किस्से के एंड में आता है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शयइन कदीर। वाकई उन्होंने भी ये सोचा कि कैसे होगा, ये कभी दोबारा आबाद हो सकता है बल। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, फअमातहुल्लाह, तो मार दिया उसको अल्लाह ने, अल्लाह ने उनको मौत दे दी, नींद नहीं थी, मौत दे दी, मौत। असहाबे कहफ को तो नींद आई थी ना, इनको पर मौत तारी कर दी अल्लाह ने। कितने अरसे तक, मिआत आमिन, 100 साल तक मरे रहे। अल्लाह अकबर। सुम्मा बाअसहु, फिर इनको उठाया। देखिए पहले वक्त में ऐसे भी बाज वाकयात हुए हैं जो कि, यानी जिसको कहते हैं ना सुपर नेचुरल टाइप चीजें, खरके आदत वाकयात, जैसे अब असहाबे कहफ का वाकया है, जैसे अब ज़ैर अलैहिस्सलाम का ये वाकया, इस तरह के वाकयात पहले वक्त में होते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, लेकिन उसके बाद नहीं। अब सबसे बड़ा मोजज़ा जो है वो ये कुरान ही है, अब ये ऐसे मोजज़ात अब नहीं होते। तो अल्लाह ताला ने उनको मार दिया 100 ईयर्स तक, फिर उनको उठाया। कहा जाता है कि ये जो 100 ईयर्स गुजरे, 70 ईयर्स के बाद ही बैतुल मकदस फिर आबाद हो गया, वो जो उन्होंने उसने गिरा दिया था बुख्त नसर ने और सारा कर, तो वो जो भाग गए थे ना बनी इसराइल के लोग, वो वापस आ गए यहाँ पे। शहर खचा खच भर गया, वो ही पहली जैसी रौनकें हो गई, चहल पहल हो गई। अभी 100 साल पूरे नहीं गुजरे, 70 ईयर्स ही हुए थे। अच्छा, अब 100 ईयर्स जब हो गए, शहर दोबारा आबाद है, ये अब उठ गए हैं। काला, फरमाया कम लबिस्ता, अल्लाह ताला ने इनसे पूछा, सवाल किया इनसे, कितना ठहरे तुम। ये सवाल और भी कहीं होगा, हाँ ये सवाल और भी कहीं होगा, कभी आपने सुना है? हाँ ये सवाल कयामत के दिन होगा, कम लबित तुम, कितना ठहरे तुम। जन्नत वालों से अल्लाह पूछेंगे तुम कितना ठहरे दुनिया में, और जहन्नम वालों से भी पूछेंगे तुम कितना ठहरे दुनिया में। तो जैसे उज़ैर अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं वहां पे, काला, उसने कहा लबिस्तु यौमन औ बादा यौम, मैं ठहरा बस एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा, यानी वो तो यही समझ रहे हैं कि मैं सोया हूं ना, वो कह रहे हैं मैं बस एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा सोया हूँ, इसलिए कि जब उनको मौत आई थी ना, तो सूरज गरूब सॉरी तलू हुए वे अभी थोड़ी देर हुई थी, सनराइज हुए हुए अभी थोड़ी देर हुई थी, और जब ये उठे हैं दोबारा तो सूरज गरूब होने वाला था। तो उन्होंने यही सोचा कि सुबह को मैं सोया हूं और शाम को उठ गया हूं, सुभान अल्लाह। हाँ तो शायद वो सोच रहे होंगे शायद यही दिन है, या 2 दिन हो सकता है गुजर गए हों, ज्यादा से ज्यादा। इतना तो नहीं इंसान सोच सकता कि 100 साल गुजर जाए। अल्लाह अकबर, ये मेरे अल्लाह ही की कुदरत है। इसी तरह कब्रों से इंसान निकलेंगे ना, तो यही कहेंगे अभी तो हम सोए थे, ये नहीं जानते कि मर के मट्टी हो के हड्डियां अलग अलग हो के हमारे जिस्म के आजा अलग अलग हो गए। सोने वाले भी हम देखें, रात को सोते हैं, जब अगर गहरी नींद आप सो जाएं और आपकी सुबह को आंख खुले, तो क्या लगता नहीं है कि अभी तो सोए थे, फिर घड़ी देखते हैं तो कहते हैं ओ इतना टाइम हो गया मैं सोई भी थी, ऐसे होता है ना। तो अल्लाह ताला जो ये इस तरह से उनको क़यामत के दिन उठाएगा ना, तो तब भी लोग यही कहेंगे कि हम दुनिया में बस एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा ठहरे थे, उनकी पूरी दुनिया की ज़िंदगी ऐसे नज़र आएगी। तो जन्नत वाले जब ये बात कहेंगे ना, जन्नत वाले भी यही कहेंगे, वो नहीं कहेंगे हमने 60 ईयर्स रहे, हम 70 ईयर्स रहे, हम 100 ईयर्स दुनिया में जीते रहे, ऐसे नहीं कहेंगे। वो भी कहेंगे लबिथना यौमन औ बादा यौम, हम बस एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा ही रहे थे। अल्लाह गिनती करने वालों से पूछ लें, हम तो नहीं इससे ज़्यादा रहे। इन्हें जिनका हाफजा बड़ा तेज है इनसे पूछना। अल्लाह ताला फरमाएंगे फिर जन्नत वालों से कि तुम कितने अच्छे रहे कि तुम बस इतनी सी देर में तुमने अपने रब को इतना राजी कर लिया कि जन्नत को हासिल कर लिया। और जहन्नम वालों से भी अल्लाह ताला ये पूछेंगे कि तुम कितना अर्सा रहे, वो भी कहेंगे लबिसना यौमा ना हुआ था यूं, हम बस रहे एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे बस इतनी थोड़ी देर में तुमने अपने रब को इतना नाराज कर दिया कि आज तुमने अपना ठिकाना जहन्नम में बना लिया। अल्लाह अकबर, देखा जाए तो कितनी थोड़ी देर के लिए हमें एफर्ट करनी है ना, कितनी थोड़ी देर के लिए अल्लाह की फरमा बरदारी करनी, उसके बाद तो उसके पास ही जाना है ना। और फिर हमेशा की खुशियां हैं, हमेशा का आराम है, हमेशा की आसाइश है, लेकिन हम कितने बेसब्रे हैं, कितने जल्दबाज हैं, हमसे क्यों नहीं हौसला होता कि हम इतनी थोड़ी देर के लिए, सिर्फ थोड़े से टाइम के लिए, एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा जो हमें नजर आएगा वहां जाके उसमें अल्लाह की फरमा बरदारी पे चल पड़े, उसमें उसकी फरमा बरदारी कर ले, हमसे वो भी नहीं होती। अल्लाह अकबर, तो 100 साल के बाद वो उठे और वो कह रहे हैं बस एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा, हालांकि ये नबी हैं, ये कोई आम बंदे नहीं है, फिर भी उनको भी नहीं पता चला कितना अरसा सोते रहे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया काला वल्लबिस्ता मिअत आमिन, तुम तो 100 साल सोए रहे, मरे रहे हो, तुम तो 100 साल मौत की हालत में रहे हो, लेकिन आप पता कैसे चलता, उनकी अपनी बॉडी के ऊपर तो जरा भी नहीं असर था 100 साल का, पता है वो वैसे के वैसे ही थे जैसे कि जिस वक्त अल्लाह ने उनको फौत किया था ना, एग्जैक्ट वैसी ही शेप में थे। ये नहीं कि देखे आप कोई मर जाता है तो उसकी बॉडी तो डिकम्पोज होने लगती है ना, और उसके बाद उसकी बॉडी का क्या हालत हो जाती है, किस तरह से वो 2-4 साल में ही आप कब्रें खोद के देखें तो वहां पे जो मुर्दा दफनाया होता है कभी अगर मूव करनी पड़े हड्डियां रह जाती हैं सिर्फ, नहीं वो वैसे के वैसे ही 100 ईयर्स बाद, कैन यू इमेजिन। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया फंजुर इला तुआमिका व शराबिका, देखो जरा अपने खाने और पीने की तरफ, लम यतसन्ना, वो भी नहीं खराब हुआ, वो भी खराब नहीं हुआ। तो खाना और पीना हालांकि कितनी जल्दी सड़ जाता है, पानी भी अगर एक जगह खड़ा रहे, आप सोचिए एक जगह पड़ा रहे उसमें सड़ान पैदा हो जाती है, खाना तो उससे भी पहले खैर खराब हो जाता है, घर में ही अपने खाना एक दिन बाहर रखे छोड़े तो कैसी उसमें से स्मेल आने लगती है। 100 साल गुजर गए, सुबहान अल्लाह, खाना ही नहीं खराब हुआ। वंजुर इला हिमारिका, और अपने गधे की तरफ देखो, अब आगे नहीं बताया कि गधे को क्या हुआ, लेकिन जब उन्होंने इधर उधर देखा ना तो वहां पे तो हड्डियां पड़ी हुई थी, बिल्कुल सफेद हड्डियां पड़ी हुई थी, गधे का तो कोई नामो निशान ही नहीं था, और वो सीधा होने की वजह से उनकी सफेदी भी चमक रही थी। अल्लाह अकबर। तो देखिए वो चीज, ये जो जानदार होता है जब ये मर जाता है तो वो चीज तो गलने सड़ने में काफी टाइम लगता है उसको, उसकी बॉडी को, है ना, ऐसा ही है ना, काफी कुछ ईयर्स लगेंगे, कुछ टाइम लगेगा, लेकिन खाने पीने के गलने सड़ने को तो चंद घंटों के अंदर गल सड़ जाता है, चंद दिनों में गल सड़ जाता है। वो चीज जो जल्दी गल सड़ जाती है वो अभी तक फ्रेश पड़ी हुई है वैसी की वैसी, और वो जिसको इयर्स एंड इयर्स लगते हैं वो बिल्कुल ऐसे, यानी हड्डियां पड़ी हुई है, उसका गोश्त का नामो निशान ही नहीं है। गधे की ये हालत है और खाना बिल्कुल ठीक ठाक पड़ा हुआ। अब इससे क्या पता चलता है, वली नज आलू का आयत लिन्नास, ताकि हम बना दें तुमको एक निशानी लोगों के लिए। देखिए सब में निशानी, सब में निशानियां, सबसे पहले तो यही दो निशानियां देख ले, खाने को अल्लाह ने महफूज रखा और गधे को मार के हड्डियां भी अलग हो गई। तो अल्लाह जिस चीज को चाहे अल्लाह ताला बचा ले और जिसको चाहे खत्म कर दे, जिसको चाहे जहां चाहे जिस वक्त चाहे मौत दे दे। अब देखिए ये अल्लाह की कुदरत है ना कि अल्लाह ताला ने टाइम को रोक दिया उज़ैर अलैहिस्सलाम के ऊपर भी और खाने और पीने पे भी, अल्लाह की कुदरत है। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए थे तो जब वापस आए हैं तो कुंडी वैसे ही हिल रही थी और बिस्तर वैसे ही गर्म था, हालांकि कितनी सैर की, कितनी दूर गए, टाइम को अल्लाह ताला ने रोक दिया दुनिया में, सुभान अल्लाह, इतनी सैर करके भी आ गए। वो टहनी जो आपके जाने से हिली थी वो टहनी वैसे ही हिल रही थी, और वापस भी आ गए। ये अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह ताला, इसीलिए तो साइंसदान अब बेचारों को तो कुछ समझ आती नहीं है, इधर उधर सर मारते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, लेकिन वो अब खुद कहते हैं कि जो इस सारी कायनात का बनाने वाला है ना, बेशक वो कोई नॉन बिलीवर है, लेकिन फिर भी वो भी मजबूर है इस बात को मानने पे कि वो कहते हैं जो इसको बनाने वाला है वो टाइम के कैद से बियॉन्ड है, उसके ऊपर कोई टाइम नहीं है। पता है ये इस चीज को मान गए, उसके ऊपर कोई टाइम नहीं है, वो टाइम की कैद से बाहर है, क्योंकि टाइम जो है ना वो हम बेशक देख नहीं सकते, बेशक उसको सुन नहीं सकते, लेकिन टाइम एक ऐसी चीज है जो जैसे जैसे गुजरता जाता है हर चीज को पुराना कर रहा है। वो एक चीज है जो कि बस सिर्फ महसूस हो रही है कि वो गुजरता जा रहा है, गुजरता जा रहा है, गुजरता जा रहा है, वरना कहां से, मतलब व्हाट इज टाइम, वेयर इज टाइम। टाइम की कोई चीज तो नहीं है ऐसी ना कि जिसको हम पकड़ लें, किसी को हम देख लें, वो जी टाइम जा रहा है, नहीं, बस एक गैर महसूस तरीके से वो आगे होते जाते। अल्लाह की ताकत है, उसकी कुदरत है, वो चाहे तो वक्त को रोक दे, चाहे तो वक्त को तेज चला दे, चाहे तो वक्त को स्लो कर दे किसी के लिए, उसकी कुदरत है। कभी आप देखते हैं ना, आपको लगता है वक्त कितनी जल्दी गुजर गया, और कभी वक्त लगता है कि एक एक लम्हा पहाड़ के बराबर बन गया। मेरा अल्लाह जिसकी मदद करना चाहे तो उसके लिए मुश्किल वक्त भी चंद मिनटों में गुजार दे ना, मेरे अल्लाह की ताकत है। हमें जो चीजें इम्पॉसिबल लगती हैं हम सोचते हैं कि पता नहीं, उतनी बेचारे हमारे भी दिमाग इतने छोटे छोटे तो दिमाग हैं, अकलें भी छोटी हैं, वो अपनी कैपेसिटी के अंदर, दिमाग के अंदर आती ही नहीं ना ये बात कि ये कैसे हो सकता है क्या, तो हम बस इतना ही सोच सकते हैं जितनी हमारी छोटी सी महदूद अकल है, इसके अंदर समाती नहीं बात, कितने कमजोर है ना हम, हमें ये बात ही नहीं समझ आती कि वो चाहे वक्त को तेज चलाए, आहिस्ता कर दे, रोक दे, चलाए ही नहीं, वो चला ही नहीं वक्त इनके ऊपर। सिर्फ उज़ैर अलैहिस्सलाम और वो खाना पीना, उस उनको ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल जैसे असहाबे काफ नहीं थे कि उनके ऊपर वक्त रुक गया, वो भी उन्होंने भी उठ के यही कहा कि बस हम अभी तो सोए थे, ऐसा ही है ना, ना उनका जिस्म गला, ना उनको खाने की जरूरत। आप सोच सकते हैं 300 साल तक कोई खाना ही ना खाए तो वो भी जिंदा बैठा रहे, ये तो चलो फौत हो गए थे तो सोए हुए थे। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला ने देखें टाइम जोन ही इनके ऊपर रोक दिया, खाना पीना वैसे ही पड़ा हुआ, और उज़ैर अलैहिस्सलाम को देखें तो वो अच्छे भले हैं, वैसे के वैसे हैं। अब वो जाते हैं जब बस्ती में तो देखते हैं जो उनके पोते पड़पोते हैं ना, वो भी पड़पोते भी बूढ़े हो चुके हैं, वो भी इतने बूढ़े हो गए, सुभान अल्लाह। और ये यंग के यंग वैसे ही जैसे पहले दिन थे जब उनको मौत आई थी, और फिर उनकी तौरात उनकी गुम हो चुकी थी ना, तो उज़ैर अलैहिस्सलाम के हाफजे में थी तौरात, ये हाफिज थे उसके, तो इन्होंने फिर लिखवाई थी दोबारा तौरात, इसीलिए फिर इनको देख के वो यहूदी कहने लगे ये तो नाऊज़ु बिल्लाह अल्लाह का बेटा है, कि इस तरह की कितनी बड़ी एक निशानी थी अल्लाह ने दिखा दी लोगों के लिए। अब ये लोगों के सामने आए सब लोग हैरान हो गए। अच्छा अब देखे वन जोर, अच्छा आप तीसरी चीज भी देखो, एक तो खाना पीना दिखा दिया, एक अल्लाह ताला ने दिखा दिया, ये देखो तुम्हारा जो गधा था वो भी देखो कि बिल्कुल मर के उसकी हड्डियां भी अलग हो गई हैं। अब देखो इनकी तरफ, अब देखो इलल इज़ामी, हड्डियों की तरफ देखो, कई फनुन शिजुहा, किस तरह हम जोड़ देते हैं इनको, उठा देते हैं इनको हड्डियों को, सुम्मा नक्सूहा लहमन, फिर हम पहनाते हैं उनको गोश्त। देखिए हड्डियों के ऊपर गोश्त भी ऐसे ही है जैसे जिस्म के ऊपर आप कपड़े पहनाते हैं ना, कभी आपने छोटे बच्चों को कपड़े पहनाए हैं तो देखा हो ना कैसे पहनाते हैं, इसी तरह गोश्त इन हड्डियों ने पहना हुआ है। तो सुभान अल्लाह, उनका देखना था कि उनके देखते ही देखते हवा से ये सारी हड्डियां जमा हुई, फिर एक एक हड्डी अपनी जगह पे जुड़ गई, फिर हड्डियों का पूरा ढांचा खड़ा हो गया, उसके ऊपर फिर गोश्त चढ़ना शुरू हो गया, रगे पट्ठे खाल सब उसके ऊपर आ गई। तो क्या खुद से आ गई, कोई जोड़ने वाला नजर नहीं आ रहा, कोई गोश्त पहनाने वाला नजर नहीं आ रहा, कोई हड्डियों को खड़ा करने वाला नजर नहीं आ रहा, मगर ये खुद से नहीं जोड़ रही थी, अल्लाह इनको जोड़ रहा था। अब कितना यकीन उतरा होगा उज़ैर अलैहिस्सलाम ने कि अल्लाह कैसी कुदरत रखने वाला है। खलम माता बैना लहो, फिर जब वाजे हो गया इसके लिए, जब सब चीज उसके सामने खुल गई, काला कहा आलम अन्नल्लाह अला कुल्ली शयइन कदीर, मैं जान गया, मुझे यकीन हो गया, मुझे समझ आ गई कि अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है, वो जो चाहे करे। काश ये ईमान हमारे अंदर उतर जाए कि जब हम मायूसियों के अंधेरों में जाने लगते हैं कि इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, हे अल्लाह तू हर चीज पे कुदरत रखता है, हर चीज पे। कुल्ली शैइन इसलिए कहते हैं कि वी कैन नॉट इवन डिफाइन कि अल्लाह ताला किस किस चीज पे कुदरत रखता है। हम नहीं, हम अगर कहने लगे अल्लाह इस पे भी कुदरत रखता है, इस पे भी कुदरत रखता है, इस पे भी कुदरत रखता है, टाइम रोकने पे भी रखता है, जिंदा करने में भी रखता है, हम तो लिमिटेड चीजें बोल सकते हैं, लिमिटेड चीजें, क्योंकि जो चीजें हमारी अकल में आ सकती है हम उतनी पे ही कहेंगे ना अल्लाह इस पे कादिर है। लेकिन जब हम कह रहते थे ना अला कुल्ली शैइन, तो इसका क्या मतलब है, हर चीज पे, तो मतलब हुआ कि वो चीज चाहे मेरी अकल में आए, मुझे समझ आ रही है, या मैं उसको जान सकती हूं या नहीं जान सकती, हर चीज में मेरी अकल ने ही गिव अप कर दिया, बस हर चीज पे, जो भी कोई सोच सकता है और जो कोई सोच नहीं सकता उस पे भी, समझे ना। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला क्यों दिखाता है ये, क्यों उसने दिखाया इनको ऐसा, क्योंकि देखें उन्होंने लोगों तक बात पहुंचानी होती ना पैगंबरों ने, तो अल्लाह ताला उनको ऐसे मुशाहिदात करवा देता है। देखो कितनी एक हमारे लिए इसके अंदर यकीन रखने की चीज है, ऐसा यकीन होना चाहिए हमारा कि इन अल्लाह अला कुल्ली शैन कदीर। हम कहते तो ये हैं लेकिन असल में यकीन अंदर उतरा नहीं होता। सहाबा के अंदर ये यकीन था, वाकई समझते थे, और किसी को मौत देना और मौत मुर्दा को जिंदा करना, अल्लाह इस पे भी कादिर है, ये भी उनको यकीन था। अपने आप को यकीन दिलाने के लिए ना इंसान कुछ कुछ कोशिशें भी करे ना, फिर इल्म भी ले और कोशिश भी करता रहे कि किस तरह मैं अपने आप को यकीन दिलाऊं। अल्लाह मार भी सकता है, वो जिंदा भी कर सकता है, यही व युमीत, वो दोनों काम कर सकता है। सहाबा इस यकीन को लाने के लिए पता है क्या करते थे, वो अपने हाँ गड़ा खोद लेते थे और उसमें लेट जाते थे ताकि यकीन आ जाए कि एक दिन मुझे मर जाना है, एक दिन मेरा अल्लाह मुझे मौत दे देगा। ठीक है, इसी तरह आप भी इस यकीन को लाने के लिए मुर्दों को नहलाएं ताकि ये यकीन अंदर आए कि अभी जो हंस बोल रहा था, अभी जो चल फिर रहा था, देखो मेरा रब वो है जिसने इससे जिंदगी वापस ले ली, देखो इसको कैसा बेबस कर दिया, जो रब इससे जिंदगी वापस ले सकता है वो मुझसे भी ले सकता है। तब यकीन आएगा अंदर, मैंने भी चले जाना है। और उसको देख के कभी ये ख्याल आता है ये कभी दोबारा जिंदा हो सकता है भला, ये कभी ख्याल आता है। हाँ इसलिए कि इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पे कादिर है, इसको भी उठाएगा वो, ये जो आज मेरे हाथों में ऐसे उलट पुलट हो रहा है अल्लाह ने इसको भी खड़ा कर देना है, ये जिसको जितना मर्जी अब मैं इस वक्त बुलाऊं, चीखूं चिल्लाऊं, ना सुन सकता है, ना बोल सकता है, ना देख सकता है, ना हिलजुल सकता है, इसी में जान पड़ जाएगी और सीधा खड़ा हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, इसलिए कि इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। जब आप दुआ करें ना, और ऐसी दुआ के जिसमें आपको लग रहा हो शैतान मायूसी डाल रहा हो कि अब ये कैसे कभी हो सकता है, तो कहें इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अपने दिल को यकीन दिलाया करें इस बात का, खुद से खुद कहा करें। इज़ क़ाला इब्राहिम, और जब कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, अब तीसरा ये वाक्या है लाइफ आफ्टर डेथ का, रब्बी ए मेरे रब, अरिनी मुझे दिखा दे, क्या दिखा दे, कैफ़ तुहयिल मौता, किस तरह तू जिंदा करता है मुर्दों को, अल्लाह मुझे दिखा दे ये, क्यों अल्लाह ताला पूछ रहे हैं आप। क़ाला अवलम तुमिन, फरमाया क्या भला तुम्हें ईमान नहीं है इस बात पे, अल्लाह ताला ने सवाल फरमाया, इसलिए क्यों सवाल फरमाया رہتی دنیا تک کہیں کبھی کوئی اللہ کے اس دوست کو یہ نہ سمجھے کہ ان کو ایمان نہیں تھا اس بات کے اوپر. نہیں, ایمان تو تھا. فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے قالا بلا, فرمایا کیوں نہیں, ایمان تو ہے اللہ, میرے پاس ایمان ہے, لیکن کیا بات ہے, پھر کیوں یہ سوال کر رہے ہیں. ولیکن لیطمئن قلبی, لیکن تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے. اطمینان, دیکھیں جس چیز کو آپ نے دیکھا نہ ہو نا آنکھوں سے, چاہے آپ کو جتنا بھی اس پہ یقین ہو, لیکن پتہ ہے ہوتا کیا ہے, انسان اس چیز کی کھوج میں لگا رہتا ہے کہ جو ہے نا یہ کیسے ہو, کیا ہو, پتہ نہیں یہ کیسے ہوگا, یہ کام کس طرح سے یہ ہوگا. تو یعنی ایک انسان کے اندر ہوتی نا یعنی کیوریوسٹی ہوتی ہے, تو صرف اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا. ورنہ دیکھیں کوئی بندہ یہ سوچ سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو اتنے بڑے اللہ کے نبی ہیں, پھر ان کو کیا ضرورت ہے کہ نہیں اللہ مجھے دکھا, کیا ان کو یقین نہیں تھا؟ یقین تھا, لیکن ایک ہوتا ہے نا دل کا ٹھک جانا, سکون آ جانا, جم جانا دل کا, کہ پھر دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے لیکن انسان کا یقین متزلزل نہ ہو. تو اس کے لیے انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے دکھا دے. دیکھیں حضرت علی ہے نا, حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر غیب کا پردہ اٹھ جائے تو میرے یقین اور اطمینان میں کوئی ذرا سا بھی فرق نہیں آئے گا, یعنی کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا میرے یقین اور اطمینان میں, کیونکہ مجھے ایمان بالغیب سے اطمینان کامل حاصل ہے. مجھے یعنی کیا مطلب ہے کہ اگر غیب کا پردہ ہٹ جائے میں جنت دیکھ لوں تو ایسا نہیں ہوگا. اب جیسے ہمارے جیسے لوگ ہیں, اب ہمارا یہ حال ہے, اگر ہمارے سامنے جنت لے آئی جائے تو ہمارا یقین کتنا بڑھ جائے گا نا, ہمارے سامنے جہنم لے آئی جائے کتنا یقین بڑھ جائے گا. لیکن حضرت علی فرماتے ہیں اگر میرے سامنے لے کر آئی جائے نا, پھر بھی میرے یقین میں ذرا سا بھی اضافہ نہیں ہوگا, ذرا سا بھی زیادہ بڑھے گا نہیں میرا یقین, کیونکہ آلریڈی ان کو ایسا یقین ہے جیسے کہ سامنے دیکھ کے آپ کو کسی چیز پہ یقین آتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب سوال یہ اٹھ سکتا ہے کہ حضرت علی کو اگر اتنا یقین تھا تو پھر ابراہیم علیہ السلام کیوں یہ ایسے پوچھ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ایک اطمینان قلب ہے نا, یہ انہوں نے فرمایا لیطمئن قلبی, اطمینان قلب کے بھی لیولز ہوتے ہیں. ایک لیول تو وہ ہے جس پہ حضرت علی ہیں, جو اولیاء اللہ کا, جو صدیقین کا, ان کا لیول ہے, اور ایک لیول وہ ہے جو اتنا اوپر ہے جو انبیاء کا لیول ہے, جو بہت اوپر ہے. حضرت علی کا جو لیول ہے اطمینان کا, وہ بے شک بہت اونچا لیول ہے, لیکن خلیل اللہ کے برابر نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی نبوت, جو مقام نبوت ہے اس میں جو اطمینان کا درجہ ہے نا, اطمینان قلب کا, وہ بہت اوپر ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھیں اتنا تو ہمیں بھی تھوڑا, جو بھی ہمارا تھوڑا بہت ہمارا نالج ہے اس کے مطابق اتنا تو ہمیں بھی یقین ہے کہ اللہ نے زندہ کرنا ہے. تو اگر ہمارے جیسے جو بالکل ہی بیکار قسم کے لوگ ہیں, ہمارے جیسے لوگوں کو اگر اتنا تھوڑا بہت یقین حاصل ہو گیا تو آپ کیا سوچتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو نہیں ہوگا؟ تو اس لیے بعض لوگ اگر یہ کوسچن کرتے ہیں کہ انہوں نے کیوں یہ کرا, کیوں یہ کہا, کیا ان کو یقین نہیں تھا, تو یہ بات نہیں ہے. آپ اس جواب کو نوٹ کر لیں کہ وہ اپنے مطابق, اپنے لیول کے مطابق, جو ان کا لیول تھا, یقین تو ان کو تھا لیکن اطمینان قلب کے لیے, وہ اطمینان قلب جو دیکھنے سے حاصل ہوتا ہے, وہ والا لینا چاہتے تھے وہ. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ان کو تجربہ کرنے کو بتایا کہ کیا کریں. قالا, فرمایا, یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اب جہاں یہاں پہ, اچھا یہاں پہ لکھتے جائیں آپ لاسٹ نہ ہو جائیے کس نے کیا کہا. جو پہلا ہے نا قالا, اذ قالا ابراہیم, اس میں تو پتہ چل رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا. پھر آگے قالا اولم تؤمن, تو نیچے لکھ دیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. پھر آگے قالا بلا کے نیچے لکھ لیں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا. پھر اگلے قالا فخذ کے نیچے لکھ لیں بریکٹ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. فخذ, پس لے لو, اربعۃ من الطیر, چار پرندوں میں سے. परिंदों में से और परिंदे ले लो। अब ये कौन से परिंदे हैं देखिए, इसके बारे में ना बहुत सारी आरा है, हमें इसमें खैर जाने की जरूरत नहीं है कोई ऐसी, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है कौन से परिंदे थे। कोई कहता है भाई ये मुर्ग मुर्ग था एक, एक मोर था, एक कौवा था और एक कबूतर था। कोई कहता है मुर्गाबी थी और पता नहीं कौवा था और दूसरा तीसरा चीज और कोई वो था। तो एनी हाउ जो भी फोर बर्ड्स थे, ठीक है। तो फरमाया ये चार परिंदे ले लो, फसुर हुन्ना इलैका, तो फिर मानूस कर लो उनको अपनी तरफ, अपनी साथ उनको जिसको कहते ना हिला लो, यानी हिला लो का मतलब क्या होता है, अपने साथ मानूस कर लो कि वो आपसे जब आप उनको आवाज दें, जब आप उनको बुलाएं तो वो दौड़े चले आए। जैसे हो जाता है ना, हम टेम कर लेते हैं अपने जो पेट्स होते हैं उनको, इतना अपने साथ वो कर लेते हैं कि अब हमें उनकी पहचान होती है, उनको भी हमारी आवाज़ की पहचान हो जाती है। ये इसलिए भी फरमाया कि जब बाद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहीं ये बात ना हो कि ये वही परिंदा है कि नहीं है, बल्कि उनको अच्छी तरह पता हो कि ये वही वाला है जो मेरे पास था, ठीक है। अब आगे कुछ बताया नहीं गया, आगे की बात हज़फ है, लेकिन ये जान लें फिर आगे क्या हुआ। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये चार परिंदे लेके ज़िबा कर लें, जब आपने इनको अपने साथ मानूस कर लिया ना, उसके बाद ज़िबा कर लें, उनके टुकड़े टुकड़े करते हैं, बिल्कुल टुकड़े टुकड़े करके कीमा कर दिया उनको, समझ लें, ठीक है। अब उसके बाद आप इनके टुकड़े लेके आपस में मिक्स कर दें, चारों परिंदों के मिक्स कर दिए, फिर चारों पहाड़ों पे, चार पहाड़ों पे इनके टुकड़े रख दें, वो बात आ गया। तुम मजाल अला कुल्ली जबल, फिर रख दो ऊपर हर पहाड़ के, क्या रख दो, वो जो टुकड़े हैं वो मिक्स किए हुए वो हर पहाड़ पे रख दो। मिन हुन्ना जुजअन, उनमें से एक हिस्सा, अब वो जो सारा गोश्त है ना, एक हिस्सा एक पहाड़ पे, एक दूसरे पे, एक तीसरे पे, एक चौथे पे रख दी। तुम मदउहुन्ना, फिर बुलाओ उनको, या अतीना का सायन, वो आ जाएंगे तेरे पास दौड़ते हुए। अच्छा फिर क्या हुआ था, चारों पहाड़ों पे जब इन्होंने टुकड़े रख दिए और सारे परिंदों के सर अपने हाथ में रख लिए, फिर अल्लाह के हुक्म से उनको बुलाने लगे। जिस जानवर को आवाज देते थे ना, उसके बिखरे हुए पर इधर उधर से उड़ते, आपस में जुड़ते, इसी तरह खून खून के साथ मिलता, बाकी जो बॉडी पार्ट्स थे वो आपस में जुड़ते, जिस जिस पहाड़ पे होते ना वहां से आते और आपस में मिल जाते, और परिंदा दौड़ता हुआ इनके पास आ जाता और उसका सर इनके हाथ में होता ना, तो आप उसको दूसरे का सर देते, मसलन कव्वे को कबूतर का सर दे रहे हैं तो वो नहीं लेता था, खुद उसका सर देते थे तो जुड़ जाता था। यहां तक कि एक एक परिंदा इस तरह से जिंदा हो के दौड़ता हुआ इनके सामने आ गया और वैसे का वैसे ही हो गया जैसे था पहले। सुभान अल्लाह, अल्लाह की कितनी बड़ी कुदरत इन्होंने देखी। अच्छा यहाँ पे अब आप देखें, बाज लोग, अब देखें हमारे भी तो बाज लोग ऐसे वो हो जाते ना, उनको ये होता है कि अब हम ये चीज़ हम गैर मुस्लिमों को कैसे बताएंगे, तो वो कहते हैं वो उन्होंने मानूस कर लिए परिंदे, फिर उन्होंने यहाँ पे सुम मजाला ला कुल्ली जबल मिन हुना जुजन, फिर हर एक जगह पे हर एक जबल के ऊपर एक एक परिंदा रख दिया, फिर उनको बुलाया तो वो दौड़ते भी आ गए, तो इसमें कौन सी मुश्किल बात है, फिर इसमें कौन सा मौजज़ा है, फिर उन इसमें कौन सा जिंदा करने की बात है मुर्दे। लेकिन उनको ये होता है कि अभी हम गैर मुस्लिम को बताएं कैसे, वो कहेंगे ये कैसी बेकार बात तुम कर रहे हो, ये कैसी हो रहा है, वो तुम हमारा मजाक उड़ाएंगे, तो हम बस ये कह देते। अगर भाई यही बात थी तो इसमें तो कोई ऐसी खरके आदत बात ही नहीं है, सुपर नेचुरल बात ही नहीं है, वो तो कोई भी बंदा किसी का भी कोई पेट भी अपने पास रखता है, कहीं पर छोड़ के आता है, उसको आवाज देता है, वो भागा वहा जाता है, वो कौन सी ऐसी मुश्किल बात थी। तो बात ये है, हमने असल में ये नहीं ना समझते, इन अल्लाह अला कुल्ली शयइन कदीर, अगर इस पे ईमान हो ना तो फिर हम कहेंगे ऐसा पॉसिबल है, अल्लाह चाहे तो ऐसा कर सकता है, इसमें हमें शर्माने की या डरने की क्या बात है कि हम अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे गैर मुस्लिमों को, ठीक है। तो इससे अल्लाह ताला ने क्या बताया, आप देखें इस बहुत जबरदस्त मिसाल से अल्लाह ताला ने क्या सिखा दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, गौर किया आपने कुछ, सिर्फ मुर्दे का जिंदा होना नहीं दिखा दिया, बल्कि ये भी दिखा दिया कि एक दिन वो आएगा जब अल्लाह की तरफ से भी कॉल दी जाएगी ना? और ये हमारा जो वजूद है, ये जो हमारी रूह है, जैसे ये परिंदे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अब जान गए थे ना, मानूस हो गए थे तो वो भागे चले आए, तो ये रूह है ना, ये जिस्म का एक एक हिस्सा ये अपने रब से मानूस है, ये उसकी तरफ से जो कॉल आएगी ना, तो ये कब्रों से उठ के ये जिस्म दौड़ेगा और अल्लाह के हजूर हाजिर हो जाएगा। सुभान अल्लाह, आज अगर अल्लाह इनको जिंदा करके दौड़ा के इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास उनकी एक आवाज के ऊपर ये इस तरह जमा हो सकते हैं, तो क्या तुम्हारा जर्रा जर्रा अल्लाह की कॉल पे जब सूर फूंका जाएगा तो उस वक्त क्या तुम्हारा जर्रा जर्रा जुड़ के अल्लाह के सामने खड़ा नहीं हो सकता? जो अल्लाह इन परिंदों को इस तरह जिंदा कर सकता है, क्या तुम्हें नहीं कर सकता? क्या तुम्हारे जर्रे जर्रे को नहीं जोड़ सकता? जो अल्लाह इस गधे को, देखो उसकी हड्डियां भी सूख चुकी थी, सूख के सफेद नजर आ रही थी, उनको जब खड़ा कर सकता है, उन पे गोश्त चढ़ा सकता है, क्या तुम्हारे जर्रे से को जमा नहीं कर सकता? अगर इंसान अपनी पहली पैदाइश पे ही गौर कर लेना तो वो इस चीज पे यकीन कर लेगा। देखें, हम जब पहली दफा पैदा हुए तब भी तो हमारा कोई जर्रा कहाँ, कोई जर्रा कहाँ, कोई जर्रा कहाँ पड़ा होगा, फिर क्या क्या गिजाएं खाई माँ बाप ने, उनने फिर उससे नुतफा बना, फिर उससे जो भी बन के फिर इंसान जो पैदा होता है तो वो किस तरह होता है, कहां कहां इसके जर्रे पड़े होते हैं ना। अपने वजूद पे तो गौर कर लें, हमारे भी तो जर्रे बिखरे पड़े थे दुनिया में, जिन गिजाओं से हमारे वालदैन का खून बना, जिस्म बना, वो कहीं कई कई चीजें थी ना, कहां कहां से आई थी। तो अल्लाह ने जब हमें खड़ा कर दिया इस तरह पहली दफा में, तो क्या दोबारा नहीं खड़ा कर सकता? तो और ये भी आप इससे अंदाजा कीजिए कि देखें, जो चीज जिससे मानूस होती है उसकी तरफ ही दौड़ती है ना, तो इस रूह ने तो अल्लाह को पहचाना है, ये तो अल्लाह की तरफ से आने वाली आवाज को पहचान लेगी, ये जिस्म तो दौड़ेगा। लेकिन क्या बात है कि उस दिन तो ये दौड़ेगा, आज दुनिया में रहते हुए हमारे ऊपर गफलत के इतने पर्दे पड़ जाते हैं, माहौल के इतने असरात हो जाते हैं कि रब की तरफ से जो हुक्म आता है, जो कॉल आती है, उसको हम पहचानते ही नहीं है, उसकी तरफ दौड़ते ही नहीं है, उसके आगे झुकते ही नहीं है, उस पर लब्बाई कहते ही नहीं है। उस दिन इंसान कहेगा, उस दिन इंसान भागेगा। वालम अन्नल्लाह अजीजुन हकीम, जान लो अल्लाह गालिब भी है, हिकमत वाला भी है। ये ना समझना कि अल्लाह ताला किसी को ऐसा मुशाहिदा नहीं करा सकता, नहीं, वो गालिब है, वो चाहे जिसको मर्जी ऐसी चीजें दिखा दे, जिसको चाहे दिखा दे, उसके लिए मुश्किल नहीं है, हर इंसान को भी दिखा सकता है, मगर उसकी हिकमत इसमें है कि वो हर एक को नहीं दिखाता, क्योंकि वरना ईमान बिलगैब तो कुछ रहेगा ही नहीं, है ना, क्या रहेगा फिर, ये उसकी हिकमत है, वरना तो कोई टेस्ट ही नहीं रहेगा। अल्लाह ताला हमें वो ईमान अता फरमाए जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ईमान था, अल्लाह ताला ऐसा ईमान हमें अता फरमाए और इत्मीनान कल्ब अता फरमाए, और इस बात को हमारे दिलों में उतार दे कि वो हर चीज पर कादिर है। यहाँ तक तिलावत सुने, फिर आगे टॉपिक चेंज होता है, फिर हम वो देखते हैं इंशाल्लाह।
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم